एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम हास्य की एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि सोचने पे भी मजबूर करती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं वुडी एलन की, खासतौर पर उनकी लिखे गद्य की कहानियां, निबंध, पैरोडीज।
हाँ, जो उनके मशहूर संग्रहों में छपी हैं, गेटिंग इवन, विदाउट फेदर्स और साइड इफेक्ट्स।
वही फिल्मों वाले वुडी एलन, लेकिन आज फोकस उनके शब्दों पर है, उनके लिखे हुए पर।
सही। और ये सिर्फ मतलब कुछ गिनी चुनी कहानियों की बात नहीं है, अक्सर लोग द इंसैनिटी डिफेंस को एक पूरी किताब मान लेते हैं।
हाँ, मैंने भी सुना है ये।
पर वो असल में एक छोटी कहानी है। हम आज उनके पूरे गद्य लेखन के अंदाज को, उनके पीछे के फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे जो इन तीन संग्रहों में फैला हुआ है।
और ये आज इतना जरूरी क्यों लगता है? शायद इसलिए कि आजकल की जिंदगी में आपाधापी है, तनाव है, चिंता है, चीजें कई बार बेमतलब सी लगती हैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। और एलन की लिखाई वो ठीक इसी नब्ज को पकड़ती है।
हाँ, और वो भी हास्य के साथ।
एकदम। उनकी रचनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई, जिसे हम पागलपन कहते हैं, कहीं वो इस अजीब सी दुनिया में जीने का एक ज्यादा सच्चा, ज्यादा तर्कसंगत तरीका तो नहीं?
ये एक बड़ा सवाल है जिस पर एलन हमें हंसाते हंसाते सोचने को मजबूर कर देते हैं।
हाँ,
तो चलिए पहले इस अनोखे लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। वुडी एलन, असली नाम एलन स्टुअर्ट कोनिग्सबर्ग, जन्म 1935। फिल्मों से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन शुरुआत स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर हुई थी।
और देखिए, यही स्टैंड अप वाला जो अनुभव है ना, वो उनकी लिखाई में साफ झलकता है।
कैसे?
रोजमर्रा की छोटी छोटी बेतुकी बातें पकड़ना और उन्हें हंसी में बदल देना, और साथ ही मनोविश्लेषण में उनकी गहरी रुचि। वो सालों तक थेरेपी में रहे हैं।
अच्छा,
तो वो चीज उनकी रचनाओं को एक एक मनोवैज्ञानिक गहराई देती है।
और एक और चीज है उनमें, वो साहित्य, फलसफा, सिनेमा, इन ऊंची चीजों के शौकीन है।
हाँ,
लेकिन उन्हें जोड़ते हैं आम आदमी की चिंताओं से, जैसे प्लम्बर का टाइम पे ना आना,
हाँ
या डेटिंग की मुश्किलें।
बिल्कुल। ये जो ऊंची और नीची दुनिया का मेल है ना, यही उनके हास्य को बहुत अनोखा बनाता है।
हाँ, वो कोई मतलब किताबी विद्वान टाइप नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तेज नजर वाले सांस्कृतिक पर्यवेक्षक हैं। अपनी अंदरूनी दुनिया को पूरी ईमानदारी और ढेर सारे मजाक के साथ हमारे सामने रखते हैं।
और शायद इसीलिए वो आधुनिक इंसान की चिंता, उसकी बौद्धिकता का बोझ और अस्तित्व के सवालों पर लिखने के लिए इतने सटीक हैं।
बिल्कुल।
अच्छा, तो अब आते हैं उन तीन संग्रहों पर जिनका जिक्र हुआ। गेटिंग इवन 1971, विदाउट फेदर्स 1975, और साइड इफेक्ट्स 1980।
ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये एलन के साहित्यिक हास्य का निचोड़ है, कह सकते हैं।
इनमें क्या क्या मिलता है?
इनमें आपको निबंध मिलेंगे, छोटी कहानियां, छोटे नाटक भी हैं, और पैरोडीज, बहुत सारी पैरोडीज।
पैरोडी यानी?
किसी गंभीर चीज की नकल करके उसका मजाक उड़ाना।
हाँ बिल्कुल। और एलन का एक मुख्य निशाना यही है, अकादमिक लेखन, साहित्यिक आलोचना, यहाँ तक कि फलसफे जैसी गंभीर चीजों के ढोंग और बनावट की, क्या कहते हैं, हवा निकालना। और इन सब के पीछे केंद्रीय विचार या तर्क है जो बार बार उभरता है, वो क्या है?
वो थोड़ा चौंकाने वाला है। एलन का मानो कहना है कि आधुनिक जीवन ये इतना अजीब है, इतना विरोधाभासी,
हाँ,
कि जिसे समाज पागलपन कहकर खारिज कर देता है ना,
अच्छा,
हो सकता है वो असल में इस तर्कहीन दुनिया के प्रति सबसे तर्कसंगत प्रतिक्रिया हो।
वाह, मतलब पागलपन ही समझदारी है
एक तरह से। हाँ, वो मौत का डर, जिंदगी का बेमतलब लगना, प्यार की तलाश, बौद्धिक होने का दिखावा, इन सब भारी भरकम चीजों से निपटने के लिए वो हास्य का हथियार इस्तेमाल करते हैं।
सवाल वही पुराना है, एक सोचने समझने वाला इंसान जिसे पता है कि वो नश्वर है, इस विशाल शायद अर्थहीन ब्रह्मांड में कैसे जिए?
और एलन का जवाब अक्सर हंसी में छिपा होता है, लेकिन वो हंसी गहरी होती है, सोचने पर मजबूर करने वाली।
और वो ये भी दिखाते हैं कि हमारी सबसे ऊंची सोच, जैसे ब्रह्मांड के रहस्य, और हमारी सबसे छोटी निजी चिंताएं, जैसे क्या मेरी पैंट की क्रीज ठीक है,
हाँ।
ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इनका टकराना ही अक्सर बहुत मजेदार होता है।
बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये बातें उनकी कहानियों में कैसे दिखती हैं।
हाँ, कुछ उदाहरण देखते हैं।
हाँ, लगभग 8 मिनट लगाकर हम कुछ खास उदाहरणों और विषयों पर बात करते हैं, देखिए सारी कहानियां गिनाने के बजाय।
हाँ, वो तो मुश्किल होगा।
हम कुछ मुख्य विषयों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि वो इन संग्रहों में कैसे सामने आते हैं। एक बड़ा विषय है रूप की पैरोडी।
हाँ, ये तो एलन का पसंदीदा खेल लगता है। वो सिर्फ विचारों का मजाक नहीं उड़ाते,
नहीं।
बल्कि जिस तरह से वो विचार पेश किए जाते हैं उसका भी मजाक उड़ाते हैं।
हाँ
जैसे गेटिंग इवन में द मिटरलिंग लिस्ट्स।
हाँ
हाँ, ये अकाडमिक साहित्यिक विश्लेषण की पैरोडी है। कैसे विद्वान किसी लेखक की लॉन्ड्री लिस्ट जैसी चीज में भी गहरे साहित्यिक अर्थ खोज निकालते हैं।
बिल्कुल। या फिर विदाउट फेदर्स में सिलेक्शंस फ्रॉम द एलन नोटबुक्स।
अच्छा, उसमें क्या है?
उसमें वो महान दार्शनिकों की डायरियों की नकल करते हैं, लेकिन उनके नोट्स में गहरे विचारों के साथ साथ प्लम्बर न मिलने की शिकायतें या रात को देखे अजीब सपनों का जिक्र होता है।
कमाल है, यानी बड़े विचारक भी आम इंसान ही हैं।
हाँ, अपनी छोटी मोटी परेशानियों के साथ। और फिर साइड इफेक्ट्स की कहानी द होर ऑफ मेंसा, अरे वो तो कमाल ही है।
हाँ, इसका जिक्र सुना है, ये हार्ड बॉयल्ड डिटेक्टिव कहानी की पैरोडी है ना?
बिल्कुल, वो जासूसी कहानियों की गंभीर थोड़ी निराशावादी शैली, लेकिन यहाँ जुर्म कत्ल नहीं
तो क्या है?
बल्कि बौद्धिक धोखाधड़ी। जासूस एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश करता है जहाँ मेंसा के सदस्य, मतलब बहुत ऊंचे आईक्यू वाली बुद्धिजीवी लड़कियां, पैसों के बदले पुरुषों के साथ कांट और कीट्स पर बातें करती हैं।
क्या बात है, ऊंची और नीची संस्कृति का जबरदस्त मेल
है ना। इसी से जुड़ा एक और विषय है व्यग्र बुद्धिजीवी,
The anxious intellectual.
एलन का हीरो अक्सर यही होता है।
कैसा होता है ये किरदार?
पढ़ा लिखा, गहरी बातें सोचने वाला, लेकिन सामाजिक मौकों पर घबराने वाला, रिश्तों में उलझा हुआ और अपनी सेहत और मौत को लेकर हमेशा चिंतित।
हाँ, जैसे विदाउट फेदर्स की मशहूर कहानी द कुगलमस एपिसोड का प्रोफेसर कुगलमस।
हाँ बिल्कुल,
वो अपनी जिंदगी से इतना बोर हो चुका है कि एक जादूगर की मदद से मैडम बोवरी उपन्यास के अंदर पहुंच जाता है
और उसके साथ रोमांस करने लगता है। ये पलायनवाद और बौद्धिक जीवन की हताशा पर एक तीखा पर मजेदार व्यंग्य है। उसे ओ हेनरी पुरस्कार भी मिला था।
ये किरदार, ऐसे लोग हमें अपने आसपास भी दिखते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, वो लोग जो दुनिया बदलने की बातें करते हैं पर किसी पार्टी में जाकर कोने में खड़े रहते हैं। एलन इन्हीं किरदारों की अंदरूनी कश्मकश को पकड़ते हैं।
एक और अहम पहलू, पागलपन बनाम अनुकूलन, इंसैनिटी वर्सेस अडैप्टेशन। ये वो विचार है जिसका जिक्र ने शुरू में किया था।
हाँ, क्या जिसे समाज पागलपन कहता है वो वाकई एक बीमारी है या फिर एक बीमार माहौल के प्रति एक स्वस्थ प्रतिक्रिया?
विदाउट फेदर्स की कहानी द इंसैनिटी डिफेंस इसी सवाल को उठाती है, हालांकि एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में।
कैसे? ये एक काल्पनिक कानूनी केस फाइल की तरह लिखी गई है। उसमें एक आदमी पर अजीब इल्जाम है और उसका वकील बचाव में कहता है कि उसे लगता है वो मसीहा है।
अच्छा,
तो ये विश्वास, भ्रम और सामान्य क्या है, इस पर सवाल खड़े करती है।
या फिर गेटिंग इवन की कहानी अ लुक एट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।
हाँ, वो भी जबरदस्त है।
उसमें माफिया को एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह दिखाया गया है। गैंगस्टर मीटिंग कर रहे हैं, मेमोज लिख रहे हैं
और अपने खर्चों का हिसाब रख रहे हैं, जैसे सीमेंट के जूते बनाने में कितना खर्चा आया।
ये दिखाता है कि कैसे संस्थाएं ऐसे काम करती हैं जो व्यक्तिगत स्तर पे पागलपन लगे पर सिस्टम में वो नॉर्मल माने जाते हैं।
बिल्कुल। और आखिर में वो विषय जो शायद सबसे ज्यादा वुडी एलन वाला है, ब्रह्मांडिया बनाम सांसारिक,
कॉस्मिक वर्सेस मंडेन,
बड़े बड़े सवाल और रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताएं।
हाँ, जैसे साइड इफेक्ट्स का छोटा नाटक द कंडेम्ड।
उसमें क्या होता है, एक आदमी को फांसी होने वाली है और वो अपने आखिरी पलों में भी मौत के डर या पश्चाताप की बजाय बेकार की दार्शनिक बहस में उलझा हुआ है।
अरे, ये तो अस्तित्ववाद की पैरोडी हो गई।
हाँ, ये दिखाती है कि हम मौत के सामने भी कैसे शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। और ये सारी कहानियां, चाहे वो हिटलर के नाई के संस्मरण हो, दश्मीर मेमोयर्स,
हाँ,
या फिर इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स को डेंटिस्ट की तरह दिखाने वाला हास्य, इफ द इम्प्रेशनिस्ट्स हैड बीन डेंटिस्ट्स, कहीं ना कहीं इसी टकराव को दिखाती हैं, हमारी ऊंची आकांक्षाएं और हमारी जमीनी हकीकतें।
तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ पिरोएं तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? मुझे लगता है पहला तो यही है कि बौद्धिक होने का ढोंग अक्सर हास्यास्पद होता है।
बिल्कुल, एलन बार बार अकेडमिक भाषा, कला की दुनिया के दिखावे, दार्शनिक शब्दावली इन सब का मजाक उड़ाते हैं।
और ये भारत में भी कितना सच लगता है ना, जहाँ अक्सर मुश्किल शब्दों और विदेशी सिद्धांतों का रौब गालिब करने की कोशिश की जाती है।
हाँ, एलन हमें याद दिलाते लें कि असल बात सादगी और ईमानदारी में है।
दूसरा संदेश कि जिसे हम पागलपन कहते हैं उस पर सवाल उठाना जरूरी है।
बिल्कुल।
क्या वाकई वो व्यक्ति असामान्य है या फिर वो परिस्थितियां असामान्य हैं जिनमें उसे रहना पड़ रहा है।
ये बात भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो चुप्पी है उसके संदर्भ में बहुत मायने रखती है।
सही कहा। अक्सर लोग तनाव, चिंता या अवसाद को व्यक्तिगत कमजोरी मान लेते हैं, जबकि हो सकता है कि वो सामाजिक दबाव, काम के बोझ या पारिवारिक अपेक्षाओं के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो।
एलन हमें उस नजरिए से सोचने को कहते हैं।
तीसरा, हास्य सिर्फ हंसी नहीं बल्कि सच का सामना करने का एक तरीका है। एलन मौत, अर्थहीनता, प्यार में नाकामी जैसे मुश्किल विषयों से भागते नहीं हैं, बल्कि उनका मजाक उड़ाकर उन्हें सहने लायक बनाते हैं।
हाँ, जैसे हमारे यहाँ भी लोग ट्रैफिक जाम, सरकारी दफ्तरों की लेटी लतीफी या नेताओं के बयानों पर चुटकुले बनाकर अपना गुस्सा और हताशा निकालते हैं, तरह इस्तेमाल करते हैं।
और चौथा, हमारी बड़ी चिंताएं और छोटी परेशानियां अक्सर एक ही नौ में सवाल होती हैं।
हाँ, हम ईश्वर के अस्तित्व पर शक कर सकते हैं और उसी वक्त इस बात पर खींच सकते हैं कि ड्राई क्लीनर ने हमारी शर्ट खराब कर दी।
ये विरोधाभास ही शायद इंसान होने का हिस्सा है। पूजा पाठ करते हुए भी घर की चिंता सता सकती है।
बिल्कुल। और एलन इसी मानवीय सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के दिखाते हैं।
एलन के लेखन की एक और खासियत है उनके यादगार वाक्य, कोटेशंस, जो तीखे भी हैं और मजेदार भी।
हाँ, बहुत है। कुछ पर बात करते?
जरूर।
एक तो मेरा पसंदीदा है, नॉट ओनली इज देयर नो गॉड बट ट्राई गेटिंग अ प्लमर ऑन वीकेंड्स।
हाँ, ये क्लासिक है। न केवल ईश्वर नहीं है बल्कि जरा वीकेंड पे प्लम्बर बुलाकर तो देखो।
ये कमाल का है। एक ही लाइन में बड़ी दार्शनिक निराशा और एकदम जमीनी झुंझलाहट, और कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि हमारे लिए तात्कालिक समस्या अक्सर ज्यादा बड़ी लगती है।
बिल्कुल।
एक और है, व्हाट इफ एवरीथिंग इज एन इल्यूजन एंड नथिंग एग्जिस्ट्स, इन दैट केस आई डेफिनेटली ओवरपेड फॉर माई कॉर्पेट।
अगर सब कुछ भ्रम है और कुछ भी सच नहीं है, तब तो मैंने यकीनन अपने कालीन के ज्यादा पैसे दे दिए।
फिर वही बात, बड़े से बड़े शक के बीच भी अपनी जेब कटने का दुख सबसे ऊपर।
हमारी इंसानी फितरत पर सटीक टिप्पणी है।
और ये वाला थोड़ा गहरा है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी देयर व्हेन इट हैपेंस।
मैं मौत से नहीं डरता, बस जब वो आए तो मैं वहां मौजूद नहीं रहना चाहता।
ये मौत के डर को टालने का एक बहुत ही चतुराई भरा और थोड़ा बेतुका तरीका है। दिखाता है कि हम कैसे मुश्किल सच्चाइयों से बचने के लिए शब्दों का खेल खेलते हैं।
और एक विचार जो हमारे स्रोत सामग्री से आता है और एलन के दर्शन का सार पकड़ता है, समाज ने हमें यकीन दिला दिया है कि अमानवीय परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाना ही सेहतमंद होना है,
जबकि उन परिस्थितियों को लेकर सही मायनों में परेशान होना बीमारी है।
ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या वाकई हमेशा शांत रहना, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना ही नॉर्मल या हेल्दी है?
या कभी कभी गुस्सा आना, परेशान होना, सवाल उठाना ज्यादा जरूरी है, खासकर जब हालात वाकई खराब हों।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, कैसे इस्तेमाल करें इन्हें?
एक तो बौद्धिक विनम्रता सीखना। एलन हमें सिखाते हैं कि बड़े बड़े शब्दों, ऊंची पदवियों और अधिकार के दावों पर आंख मूंद कर यकीन न करें।
हर चीज पर सवाल उठाएं, उसके पीछे के तर्क को समझें।
भारत में ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर गुरुओं, विशेषज्ञों या सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने वालों की बातों में आ जाते हैं। आलोचनात्मक सोच, मतलब चीजों को जस का तस स्वीकार न करके उनकी पड़ताल करना, ये बहुत जरूरी है।
दूसरा,
हास्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना।
हाँ,
जिंदगी की बेतुकी बातों, अपनी निराशाओं, दूसरों के पाखंड पर हंसना सीखें, इससे शायद बोझ थोड़ा हल्का लगे। जैसे ट्रैफिक में फंसे होने पर गुस्सा करने के बजाय उस स्थिति की अब्सर्डिटी पर हंसना।
हाँ, या दफ्तर की पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाना।
ये शायद हमें चीजों से थोड़ा डिटैच होने में मदद करता है।
तीसरा, ये समझना कि हम अपनी चिंताओं में अकेले नहीं हैं।
एलन के किरदार हमें दिखाते हैं कि असुरक्षा, चिंता, प्यार में नाकामी, मौत का डर, ये सब मानवीय अनुभव का हिस्सा है।
भारत जैसे समाज में जहां अक्सर अपनी भावनाओं या समस्याओं को छिपाने का दबाव होता है, ये जानना कि दूसरे भी ऐसा ही महसूस करते हैं बहुत राहत दे सकता है।
ये शेयर्ड न्यूरोसिस या साझा विक्षिप्तता में एक तरह का सुकून है।
बिल्कुल।
और आखिर में, अपनी मनोवैज्ञानिक परेशानियों को देखने का एक नया नजरिया।
वो कैसे?
क्या मेरी चिंता वाकई मेरी समस्या है या ये उन बाहरी हालात का नतीजा है जिनमें मैं जी रहा हूँ? ये सवाल हमें खुद को दोष देने के बजाय शायद व्यवस्था या माहौल पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे अहम सीख या सबसे दिलचस्प बात क्या रही?
मेरे लिए शायद ये कि हास्य कितना गहरा काम कर सकता है। एलन हंसी मजाक में वो बातें कह जाते हैं जो सीधे सीधे कहने पर शायद लोग सुनना भी ना चाहें।
हाँ।
वो हमें असहज करते हैं लेकिन प्यार से, हंसी के साथ। ये हास्य को विश्लेषण और आलोचना का एक शक्तिशाली जरिया बनाता है।
और मेरे लिए सबसे यादगार पहलू ये रहा कि कैसे हमारी सबसे गहरी चिंताएं और हमारी सबसे छोटी मामूली परेशानियां एक ही धागे से बंधी हैं।
हाँ,
यूनिवर्स के रहस्यों पर सोचना और प्लम्बर का इंतजार करना, ये दोनों एक ही दिमाग में एक साथ चल सकते हैं।
और यही शायद आधुनिक इंसान होने की ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी।
बिल्कुल।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सामान्य होने का मतलब अक्सर बेतुकी या अमानवीय परिस्थितियों से समझौता कर लेना है, तो फिर ऑथेंटिकली यानी सच्चाई और ईमानदारी से जीने का क्या मतलब हुआ? क्या थोड़ी सी असामान्यता, थोड़ा सा वो जिसे दुनिया पागलपन कहती है, असल में ज्यादा मानवीय, ज्यादा सच्चा होना है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।